इल्म का मुझको शौक था कर खुदा इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ज़ुलहिज्जा, हज वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना है और अल्लाह ताला ने इसे हुर्मत वाला बनाया। चार महीने हुर्मत वाले हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में जो ख़ास ज़ुल्हिज्जा का महीना है, इसकी अज़मतों की क्या कहने कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस महीने की 10 रातों की कसम बयान फरमाई और इस महीने की जो पहली सुबह है, जो पहली फज्र है, अल्लाह ताला ने उसकी कसम बयान फरमाई। चुनाचे 30वें पारे में इरशाद होता है, वल फज्री वलयालिन आश्र, फरमाया फज्र की कसम और 10 रातों की। फज्र से क्या मुराद है? मुफस्सरीन ने लिखा है कि इस फज्र से मुराद है ज़ुल्हिज्जा के महीने की पहली सुबह, ज़ुल्हिज्जा के महीने की पहली फज्र। और दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद है 10 ज़ुल्हिज्जा, जो कुर्बानी का दिन है, जो तवाफ़ु ज़ियारा का दिन है, जिस दिन हाजी मुज़दलिफ़ा से फारिग होकर फिर आगे मिना की तरफ जाते हैं, रमी जमरात करते हैं, तवाफ़ु ज़ियारा करते हैं, तो उस 10 ज़ुल्हिज्जा की जो फज्र है, यहाँ पर उस फज्र की कसम अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और 10 रातें कौन सी हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये 10 रातें हैं जो ज़ुल्हिज्जा की शुरू की 10 रातें हैं। यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा की रात तक, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा से पहले जो रात आती है, ये 10 ज़ुल्हिज्जा की रात है। ये 10 रातें जो हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन 10 रातों की कसम, ये 10 रातें और इनके साथ मुत्तसिल दिन, ये सब के सब अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े महबूब हैं। इन अय्याम में इबादत करना, इन अय्याम में रोजे रखना, इन अय्याम में शब बेदारी करना, रातों को जागना और इबादत करना, इन रातों में अल्लाह का जिक्र करना, इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करना, ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। तिर्मिदी शरीफ की हदीस है और बहुत ही प्यारी हदीस है। अगर इस हदीस मुबारक को यकीन कीजिए कि हम अपने दिलों में उतार लें और इसके मुताबिक अमल करने का तहिया कर लें, तो यूं कह लें कि नेकियों के एतबार से हमारी मौज हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है, उनमें कोई दिन ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों से ज्यादा पसंदीदा नहीं, इनसे ज्यादा पसंदीदा नहीं। फरमाया कि इन दिनों में हर दिन का रोजा एक साल के रोजों के बराबर है, जो ज़ुल्हिज्जा के पहले 9 दिन है। 10 ज़ुल्हिज्जा का तो रोजा मना होता है, तो जो पहले 9 दिन है, तो फरमाया कि ये इन दिनों का रोजा एक साल के रोजे के बराबर है, एक रोजा एक साल के रोजों के बराबर है। और फरमाया कि इसकी हर रात का क़याम, यानी रात को जाकर इबादत करना, फरमाया कि ये लैलतुल कद्र के क़याम के बराबर है। जैसे लैलतुल कद्र में बंदा जागता है, इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, सजदे करता है, तो जैसे उसका सवाब है, इन 10 दिनों की हर रात के अंदर अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अब आप गौर कीजिए कि आपको 10 शबे कदर मिल जाएं, 10 शबे कदर जैसी रातें मिल जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और एक रोजा एक साल के बराबर है, तो 9 साल के रोजों का सवाब और 10 शबे कदर का सवाब मिल जाए, तो सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और अजीम सआदत क्या होगी। तो अब ये जो अय्याम है, इनके माशाल्लाह ये आमाल हैं, तो अब इनमें क्या क्या अमल किए जाए। पहली बात तो यह है कि जैसे फरमाया गया कि इन दिनों में जो भी अमल किया जाए, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है, बकिया दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है, तो पहला तो ये है कि ये तय कर ले कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकी करनी है, दिन हो या रात। अब वो नेकी तिलावत की सूरत में है, वो नमाज की सूरत में है, वो सदका और खैरात की सूरत में है, वो किसी के साथ जो है वो हुस्न सलूक करने की सूरत में है, वो माँ बाप की खिदमत की सूरत में है, वो मियाँ बीवी का जो है वो आपस में जो है वो अच्छा ताल्लुक उसके एतबार से है। तो इन दिनों में बहर सूरत नेकी को अपनी जिंदगी और औकात का महवर बना लिया जाए, तो कोई भी नेक अमल किया जाए और कसरत के साथ इन दिनों में किया जाए। दूसरी बात जो फरमाया कि रोजे रखना, जो हदीस मुबारक गुजरी के एक रोजा एक साल के रोजों के बराबर है। तो जो 9 दिन हैं, 10 ज़िलहिज्जा का रोजा मकरूह तहरीमी है, तो जैसे पहले के 9 दिन हैं इन दिनों के अंदर रोजा रखा जाए। और तीसरा अमल है रातों का क़याम, क्योंकि रातों के क़याम को शब कद्र के बराबर करार दिया गया, तो रातों को क़याम किया जाए, इबादत की जाए। क़याम का मतलब कि उसमें नमाजें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, उसमें तिलावत करें, उसमें अल्लाह का जिक्र करें, उसमें दुरूद पाक पढ़ें, और इस तरह का जो इल्म दीन सीखने सिखाने का मामला है वो करें। तो ये सारी मिली जुली इबादतें करें। और बहुत उम्दा और बहुत आला ये है कि नमाज की तरफ, तिलावत की तरफ, जिक्रुल्लाह की तरफ और दुरूद पाक की तरफ आए। फिर उसके साथ एक और अमल, और वो है जिक्रुल्लाह करना, अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र करना बतौर खास इसलिए कि हदीस मुबारक में फरमाया गया, शुअबुल ईमान की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक हज के इन 10 दिनों से अफजल और पसंदीदा दिन कोई नहीं। लिहाजा, अब ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, फरमाया लिहाजा इन दिनों में सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की कसरत करो। और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और जिक्रुल्लाह की कसरत करो, तो अब वो कोई भी जिक्र हो। तो गोया इन दिनों में जैसे ये तीसरा कलिमा है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिला ले, तो इन तस्बीहात को इन दिनों में ज्यादा कर दें, बतौर खास इन तस्बीहात का फरमाया गया। और फिर इन्हीं 10 दिनों में एक इबादत है कि जो इसी महीने में होती है और इसी महीने की 10, 11, 12 तारीख को होती है, और वह है कुर्बानी। जो हज वाले हैं उनकी तो सआदत और जो उनका शरफ है वो तो सुबहान अल्लाह कि वो 9 ज़िलहिज्जा को हज करते हैं, उससे पहले हज के अफ़ाल हैं, उसके बाद हज के अफ़ाल हैं, तो उनकी किस्मत जो है वो तो काबिल रश्क है और वो तो अपनी इबादात में मशगूल होते हैं। हम उनसे हटकर जो लोग हैं उनके एतबार से कहते हैं कि कुर्बानी करना। वैसे तो हाजी भी कुर्बानी करता है, लेकिन उसकी कुर्बानी और तरह की होती है, वो ये वाली कुर्बानी नहीं होती। तो ये जो अय्याम हैं इनमें कुर्बानी करना जो है ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। हदीस मुबारक में फरमाया कि इंसान कुर्बानी के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो, जानवर का खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। और फरमाया कि ये कुर्बानी कियामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी, इस तरह खुदा की बारगाह में पेश होगी। और फरमाया कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहां कबूल हो जाता है। कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहां वो कुर्बानी कबूल हो चुकी होती है। तो फरमाया कि खुश दिली के साथ कुर्बानी करो, तंग दिली ना हो कि भाई थोड़ा सा मरियल सा जानवर ले लें या बड़ा मुश्किल काम हो है ये, यूं नहीं, खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। तो ये जो फजाइल हैं ये खास इन दिनों के हैं, तो लिहाजा जब ये दिन शुरू हो रहे हैं तो इन दिनों के अंदर कोशिश करें कि अपने आप को इबादत में, रब की बंदगी में, इताअत के कामों में, नेकियों में, नमाजों में, शब्बेदारी में, तिलावत में, जिक्रुल्लाह में, इन कामों के अंदर मशगूल रखें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
मुफ्ती साहब, आबिद हुसैन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर हज फर्ज हो गया और वो हज ना कर सका और अब उस पर कर्जा चढ़ गया तो अब वो क्या करें?
जिस पर हज फर्ज हो जाए तो हज की फर्जियत तो उसके जिम्मे बाकी रहती है। अब उसके पास पैसे ना रहे, वो मकरूज हो गया, या मकरूज ना भी हुआ लेकिन हज करने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में उसके लिए वैसे तो हुक्म ये है कि वो अब कर्जा लेकर हज पर जाए ताकि ये फर्ज उसका अदा हो जाए। लेकिन ये कर्जा लेना उस सूरत में है कि जब उसे ये समझ है कि मैं अगर कर्ज लेके जाऊंगा तो वापस आके अदा भी कर दूंगा। ये नहीं है कि लोगों का पैसा लेके और कर्ज लेके हज पे चला जाए, कर्ज पहले भी चढ़ा हुआ ऊपर से ये चढ़ गया, तो अब जो लोगों का हक है, जो हकुल अब्द है, अब उसके अंदर मजीद बोझ के अंदर आ जाए और उसे अदा करने की सूरत ही ना हो। तो लिहाजा यूं नहीं। तो अब ये है कि जब अभी हज नहीं कर सकता तो फिर इस पर ये होगा कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक ये देखे कि इसके पास असबाब हो जाए तो ये हज करे, और जब ये लगे कि अब ये हज पे नहीं जा सकता तो अब अगर इसके पास माल हो तो फिर ये वसीयत करके जाए, अगर इतना माल है कि जिससे हज हो सकता है तो फिर इस पर वाजिब होगा कि ये हज्जे बदल की वसीयत करे, यानी ये वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ से कोई शख्स जो है ये हज कर दे, तो फिर अब उस वसीयत के ऊपर वो रसा पे अमल करना वाजिब हो जाएगा। तो ये हज्जे बदल की सूरत बनती है। और अगर इसके पास माले विरासत के अंदर भी कुछ नहीं है तो अब ये है कि फिर ये तौबा करे, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिगफार करें।
मोहम्मद फारूक राशिद भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 10 ज़िलहिज्जा का रोज़ा ये हाजी के लिए मकरूह है या सबके लिए मकरूह है?
10 ज़िलहिज्जा का रोजा तो सबके लिए ही मना है ना। 10 ज़िलहिज्जा तो ईद का दिन है,
जी
तो ईद के दिन का जो रोजा है वो सबके लिए मना है। हाँ, सवाल जो बनता है वो बनता है कि 9 ज़िलहिज्जा का रोजा, क्योंकि 9 ज़िलहिज्जा को हज का बड़ा अहम रुकन अदा किया जाता है, बल्कि उसका सबसे मरकजी रुकन जो है वो अदा किया जाता है, और वो है मैदाने अराफात में हाजिरी। 9 ज़िलहिज्जा को जुहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10 ज़िलहिज्जा की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक, ये जो दरमियान का टाइम होता है, ये मैदाने अराफात में जो शख्स दाखिल हो जाए उसका हज हो गया, इहराम उसमें जरूरी होता है। तो ये चूंकि उसके हज का दिन है हाजी के लिए, और चूंकि इसमें एक इबादत, और फिर उसमें भी जो है वो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इबादत, मुसलसल दुआएं, और फिर बहुत से अफआल, उससे पहले भी फिर चूंकि मीना से आते हैं, फिर इसके बाद मुजदलफा को जाना होता है, तो ये एक पूरा यूं कह लें कि एक इबादत का पैकेज होता है जो हैवी होता है। तो अब अगर हाजी इस दिन रोजा रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि फिर वो हज के अफआल को तसल्ली के साथ और आराम के साथ अदा कर सके। तो इसलिए उलमाए किराम ने ये लिखा है कि हाजी जो है 9 ज़िलहिज्जा का रोजा वो ना रखे। हाँ, हाजी के अलावा जो लोग हैं, जैसे बाकी और लोग पूरी दुनिया में हैं, तो वो 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखे, उनके लिए ये अफजल तरीन रोजा है। ये रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद ये अफजल तरीन रोजा बनता है कि 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखा जाए। 10 की बात नहीं है, 10 का जो रोजा है वो सबके लिए मना है।
एक सवाल यह आया है कि क्या औरत इस्लामी बहन ये अपने महारिम की तरफ से हज्जे बदल कर सकती है?
औरत जो है वो भी हज्जे बदल कर सकती है। हज्जे बदल में ये जरूरी नहीं होता कि मर्द की तरफ से मर्द ही करे, औरत की तरफ से औरत ही करे, ये कोई शर्त नहीं है। औरत की तरफ से मर्द कर सकता है, मर्द की तरफ से औरत जो है वो हज्जे बदल कर सकती है। और महरम और गैर महरम का भी इसमें कोई फर्क नहीं होता। हज्जे बदल के लिए महरम को भी भेजा जा सकता है, गैर महरम को भी भेजा जा सकता है, तो लिहाजा ये भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं है।
कामिल भैया ये सवाल कर रहे हैं कि घर वालों की तरफ से जो कुर्बानी करते हैं तो क्या सारे घर वालों को बताना जरूरी है या ऐसे ही करते हैं जाकर?
घर वालों की तरफ से कुर्बानी से मुराद क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह से ये काम करते हैं। एक तो ये है कि एक कुर्बानी होती है और वो कुर्बानी घर का एक फर्द करता है, जैसे एक कुर्बानी है, एक बकरा है। अब वो एक बकरा जो है वो घर का जो सरबरा है उसने किया, तो अब अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो वो ये नियत करेगा कि ये कुर्बानी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अब बकरे के अंदर ये नियत कर ले कि मैं सारे घर की तरफ से कुर्बानी करता हूँ, तो ये तो किसी की भी अदा नहीं होगी, क्योंकि बकरे के अंदर तो कुछ 5-6-7 हिस्से नहीं होते। तो लिहाजा जो एक हिस्से वाला, यानी कि जैसे बकरा वगैरह है, तो उसमें तो जो वाजिब उसकी नियत है वो वही नियत करे कि मैं अदा करता हूँ। बकिया घर वालों के लिए सवाब, इसाले सवाब कर सकता है। दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पे गाय है, अब गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं, घर के 7 अफराद हैं या 7 से कम अफराद हैं। अब वो ये कहता है कि ये मैं अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करता हूँ, तो अब ये कुर्बानी हो सकती है। घर वालों का वाजिब तब अदा होगा कि जब उनकी इजाजत हो, जिसकी तरफ से कुर्बानी करनी हो, वाजिब कुर्बानी जिसकी अदा करनी हो उसकी तरफ से इजाजत जरूरी होती है। अब वो इजाजत या तो यूं हो कि बाकायदा उनसे पूछा जाए कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर दूं, और वो कहते हैं कि आप हमारी तरफ से कुर्बानी कर दें, या उनको बताया कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो या तो ये सराहतन इजाजत हो वाज़े अल्फाज के अंदर, और अगर ये नहीं तो फिर ये है कि एक मामूल पहले से चलता आ रहा है कि भाई घर का जो बड़ा है वो एक जानवर खरीदता है, बड़ा जानवर खरीदता है या बकरी वगैरह पाँच छः खरीदता है घर के अफराद की तादाद के बराबर, और वो हमेशा से कुर्बानी करता ही है कि भाई एक मेरी तरफ से है, एक मेरी बीवी की तरफ से है, दो मेरे बच्चों की तरफ से है। तो ये पुराना एक मामूल चलता आ रहा है और सबको ये पता है कि भाई इतने जो जानवर आए हैं तो ये सबकी कुर्बानी है। तो इसे कहते हैं दलालतन इजाजत। दलालतन का मतलब ये है कि लफ्जों से तो नहीं कहा लेकिन रवाज की वजह से, मामूल की वजह से सबको पता है कि ये कुर्बानी हमारी तरफ से है। तो इस सूरत के अंदर भी अगर कोई शख्स बगैर पूछे कुर्बानी करेगा तो वो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी।
एक सवाल ये आया है सागर भाई का कि अक्सर पुराने कपड़े जला दिए जाते हैं, इसका क्या हुक्म है?
जो शेख काबिले इस्तेमाल हो कि उसका कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, उसे जाय कर देना ये इसराफ है और इसराफ नाजायजो गुना है। जो इसराफ की ये सूरत बयान की है ये नाजायजो गुना है। इदाअते माल से हदीस मुबारक में मना किया गया। हदीस मुबारक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तीन बातों से मना फरमाया और उनके अंदर एक है माल जाय कर देना, बर्बाद कर देना, पुराने कपड़ों को जलाना जबकि उनका कोई भी इस्तेमाल हो सकता है तो ये जलाना जो है ये नाजायज है, ये गुनाह है। हाँ ये है कि इतने फटे पुराने हो गए कि अब उनका असलन ही कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसी सूरत में जला सकते हैं कि जब उसका इस्तेमाल कोई बाकी नहीं रहा। और शायद जलाने की वजह ये होती हो कि ये जो जादू वगैरह होता है या बुरे जो अमलियात होते हैं वो आम तौर पे कपड़ों पे या किसी के बालों पे, किसी की इस्तेमाल शुदा चीज़ के ऊपर होते हैं, तो शायद उससे बचने के लिए कोई ऐसा करता हो, तो इससे बचने के लिए भी अगर कोई करता हो तब भी ये दुरुस्त नहीं है।
एक सवाल ये आया है कि अगर कुर्बानी का जानवर खरीद कर लिया है, अब उसमें कोई किसी ऐब का पता चलता है तो अब क्या हुक्म होगा?
कुर्बानी के जानवर का मामूली अगर ऐब हो तो कुर्बानी हो जाती है और ये होती मकरूह है। बेहतर ये है कि छोटे से छोटा ऐब भी जानवर के अंदर ना हो। और अगर कोई ऐसा ऐब है कि जिसे जो है वो शरीयत के अंदर जिसके बारे में ये फरमाया गया है कि इसके होते हुए कुर्बानी नहीं होगी, जैसे इस तरह के बहुत से उयूब हैं कि जानवर अंधा है, जानवर के जो है वो थन खुश्क हो गए, वो जो है वो लंगड़ा है और चरागाह तक जा नहीं सकता, तो इस तरह के जो बड़े ऐब हैं तो उनके बारे में फिर यही फरमाया है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तो अब वो खरीदते वक्त पता हो या ना हो, देखना ये होता है कि जब उसको ज़बह करने लगे हैं उस वक्त उसकी कैफियत क्या है। तो ज़बह करते वक्त उसका ऐब से पाक होना ज़रूरी है इस तरह के बड़े ऐब से।
माशाल्लाह। सुहेल भाई सवाल कर रहे हैं कि सदका घर में जमा करके रख सकते हैं कि एक आध महीने बाद जाके जमा करवाते हैं या फौरन फौरन अदा करना ज़रूरी है?
सदका घर में जमा यूँ तो कर सकते हैं कि अपनी रकम जो है वो एक साइड पे करते रहें, जैसे ये घरेलू सदका बॉक्स होते हैं जो ये दावत इस्लामी की इस्तिला भी है, चलते भी हैं। तो या पुराने ज़माने में क्या होता था कि बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जब भी जो है वो घर में औरतें आटा गूंदने लगे तो एक मुट्ठी आटा जो है वो साइड में कर दें, तो ये नियत कर लें कि ये 15 दिन बाद, महीने के बाद ये वाला जो आटा होगा इसे मैं सदका कर दूंगी। या ये होता था कि उसका कुछ बना के फिर 11वीं शरीफ पे ख़त्म दिला दिया जाता था, वो फिर बांट दिया जाता था। तो यूँ जो है वो अलहदा करने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी नीयत है और अच्छी नीयत के साथ इसको जुदा किया, अब वो रकम है या कोई सामान है, कोई शय है। लेकिन ये है कि क्या ये सदका हो जाएगा, तो ये सदका अभी नहीं होगा, क्योंकि सदका तब होता है कि जब वो अपने मुस्तहिक तक पहुंच जाता है। मस्जिद को देना है तो जब मस्जिद को दे दिया, मदरसे को देना है तो जब मदरसे को दे दिया, गरीब को देना है तो जब गरीब को दे दिया, तो सदका मुकम्मल उस वक्त होता है। उससे पहले पहले ये नियत शुमार की जाएगी और ये अच्छी नियत शुमार की जाएगी।
माशाल्लाह। मोहम्मद अजहर भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या शैतान इंसान के खून में गर्दिश करता है, इस दौरान बहुत से वसवसे आते हैं, तो क्या बंदा ईमान उसके दिल से निकल जाता है?
शैतान जो है ये इंसान के खून में गर्दिश करता है, ये तो ठीक है, ये तो हदीसों इमारत में फरमाया गया है कि तशबीहन फरमाया गया है कि शैतान जो है वो इंसान के बदन में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। तो लिहाजा ये तो जो है वो बदन के अंदर वो गर्दिश करता है, ये तो ठीक है। आगे उलमा ने इसके दो माना बयान किए हैं, बाद ने फरमाया कि ये मजाजी माना के एतबार से है, मजाजी इस एतबार से कि जैसे खून गर्दिश करता है इस तरह शैतान के असरात जो है वो गर्दिश करते हैं। तो एक इसका मजाजी माना, एक हकीकी माना है। और उलमा ने फरमाया कि हकीकी माना लेने के अंदर भी कोई हर्ज नहीं है, और इसे हकीकत पर भी महमूल कर सकते हैं कि हकीकतन ही शैतान जो है वो ऐसी हरकतें करता है। तो लिहाजा हदीस मुबारक के अतबार से तो ये दुरुस्त है। अब ये है कि शैतान गर्दिश करता है और उसकी वजह से इंसान को वसवसे आते हैं, तो शैतान तो वसवसे डालता है, ये तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों और इंसानों में से ऐसे हैं कि जो लोगों के सीनों में वसवसे डालते हैं। और शैतान का वसवसे डालना तो बच्चा बच्चा जानता है कि शैतान जो है उल्टे सीधे ख्याल जो है वो दिल में डालता ही है, तो लिहाजा वो डालता है। अब यह है कि ईमान पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो देखिए ख्यालात से मुराद यूँ नहीं कि ख्याल बड़ा पक्का अकीदा बना लिया, ख्यालात से मुराद ये है कि दिल के अंदर बातें आई गईं घूमती रहती हैं। तो ये जो है ये वसाविस जो हैं इससे ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बंदा उसका अकीदा ना बनाए और उसको जो है वो लोगों के सामने बयान ना करे। यानी बयान करने के अंदर भी सूरत होती है, मसला पूछने के लिए बयान किया, लेकिन बहरहाल फी नफसी मसला यही है कि दिलों में ख्यालात आते हैं। हदीस मुबारक के अंदर सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों में बाज़ औक़ात ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं कि हमें ये पसंद है कि हम जल के कोयला हो जाएं, लेकिन ये ख्याल ना आए। इतने संगीन किस्म के ख्याल आते हैं कि जिसे बंदा जबान से बोल नहीं पाता और वो कहता है कि काश के मैं जल के कोयला हो जाऊं, लेकिन ये ख्यालात मेरे दिल में ना आए। इतने जो है वो खतरनाक और इतने दहशतनाक किस्म के ख्यालात होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो खुला ईमान है। खुला ईमान है क्या कि ऐसे ख्याल आए तो दिल ने उससे इतनी नफरत की कि मैं जल के कोयला हो जाऊं बजाय इसके कि मुझे ये ख्याल आता है। तो किसी ऐसी गलत बात से ऐसी नफरत होना जो है ये तो ईमान की अलामत है। तो फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये तो खुला ईमान है। तो ज़्यादा वसवसे से कुछ नहीं होता, और वसवसों के मामले में हल यही होता है कि इंसान अपनी तवज्जो किसी और काम में लगा दे और दूसरे कामों में लगा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखे, औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ता रहे, ला हौल शरीफ पढ़ता रहे। वसवसों से बचने का उमूमी तरीका यही है।
माशाल्लाह। मुनीर शहजाद भाई ये सवाल कर रहे हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है और कितनी उम्र में वाजिब होती है।
कुर्बानी वाजिब तो होती है जो बालिग है उसी के ऊपर, और बालिग जो है वो अगर कोई अलामत ना पाई जाए तो कमरी साल के अतबार से 15 साल का जब हो जाए तब बालिग है, और अगर उससे पहले अलामत बुलूग पाई जाए तो फिर वो बालिग हो जाएगा, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब रहा यह है कि माली एतबार से उसकी क्या पोजीशन हो कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाए, तो माली एतबार से ये है कि 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर रकम या इसके बराबर जायद ज़रूरत हाजात असलिया से जायद इंसान के पास कोई सामान हो, खा वो सामान जो है वो टीवी और इजाफी कपड़ों और घर के साजो सामान जो इजाफी होता है डेकोरेशन का होता है उसके ज़रिए हो, तो अगर ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पे इतनी मालियत की बन जाए कि जितनी मालियत के 52.5 तोले चांदी होती है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
फाहद खान भाई ये सवाल कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा भी है कि मौजू से हटके थोड़ा सा सवाल है कि मौत के फौरन बाद इंसान अपने आप को कहाँ महसूस करता है।
मौत के बाद इंसान अपने आप को कहाँ महसूस करता है, सबसे पहले तो जब रूह निकलती है तो उस वक्त तो इंसान को वो फरिश्ते नजर आते हैं कि जो उसकी रूह को निकालते हैं। अब अगर वो नेक है तो फरिश्ते अच्छी सूरत में आते हैं, अगर ये बद है और इस पर अल्लाह ताला ने अफ़ का फजल नहीं फरमाया तो फिर फरिश्ते उसके पास खौफनाक सूरत में आते हैं। अच्छा नेक है तो फिर वो रेशमी जो है वो कफन जन्नत से आता है और उसके अंदर उसकी रूह को लपेटा जाता है, और अगर बद है या मादल्ला काफिर है तो उसके लिए फिर दूसरी वईदें हैं। अब उसके बाद ये है कि वो अपने आप को कहाँ महसूस करता है, तो ये फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं, किसी के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो रूह जो है वो ऊपर चली जाती है, पहले आसमान पे दूसरे आसमान पे हत्ता के रब की बारगाह में पेश होती है। और कुछ रूहें वो हैं कि जिनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते तो उनको वापस ज़मीन पर भेज दिया जाता है। तो उस वक्त की जो कैफियत है वो ये वाली होती है। अब उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर के बाद ही उसका हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है, कब्र का जो सवाल आते हैं कब्र है वो भी हो जाते हैं, तो उस वक्त वो क्या महसूस करता है? उस वक्त तो वो खुद अपने आप को ये महसूस करता है कि कब्र के अंदर मेरे सामने फरिश्ते हैं और मैं इनको इनके सवालात के जवाब दे रहा हूं। फिर आगे उसके बाद मजीद बहुत सी सूरतें होती हैं, नेकों की अरवा के जुदा मकाम है, बदों और काफिरों की अरवा के जुदा मकाम है। नेकों की अरवा जो है वो आबे जमजम के कुएं के पास, खाने काबा के इर्द गिर्द, और या आला इल्लीशीन में, और या इसके अलावा और बहुत से मकामात होते हैं। शहीदों की रूहें जो है वो अर्श के नीचे जो है लटकी हुई किंदीले हैं, उन किंदीलों के अंदर होती हैं। तो वो एक दूसरी तफसील है। और इधर जो बुरे हैं या जो कुफार हैं उनके लिए फिर मुख्तलिफ मकामात बयान किए गए हैं, सिज्जीन है, चाहे बरहूत है, तो उनकी अरवा मुख्तलिफ अंदाज में फील करती है।
बाद अवकात बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जाती है, तो बेटियां इस मौके पर कैसे सबर करें?
बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जाती है। तरजीह जो है वो जो हुक्म शरीयत है वो तो ये है कि कुछ चीजें तो वो है कि जहां पर शरीयत ने रखा हुआ है कि इसका ये हक है, इसका ये हक है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे माँ बाप है, बाप मर्द है, माँ औरत है, लेकिन बहुत सी चीजों के अंदर तरजीह माँ को होती, बहुत सी चीजों में तरजीह जो है वो माँ को होती है। तो अब यहां पर जहां शरीयत ने माँ की जो है वो तरजीह का फरमाया वहां पर माँ को तरजीह देगा, जहां बाप की तरजीह का फरमाया वहां पर बाप को तरजीह देगा। अब रहा बेटियों का मसला, बेटियों बेटों का, अब उनके अंदर कुछ चीजें वो हैं कि जैसे विरासत का हक बनता है, विरासत के अंदर जो है वो बेटों को बेटियों से दुगना मिलता है, लेकिन इसकी जगह अगर बाप या माँ अपनी औलाद को कोई तोहफा दे तो वहां ये फरमाया गया कि बेटों और बेटियों दोनों को बराबर दे, तो वहां पर दोनों को बराबर देना चाहिए। अगरचे वहां पर भी इजाजत है इसकी कि बेटों को बेटियों से दुगना दिया जाए, लेकिन फरमाया ये है कि अफसल ये है कि बेटों बेटियों को बराबर दिया जाए। अच्छा, अब एक और सूरत होती है और वो है जो कसरत से पेश आने वाली, वो ये है कि घर में कोई शय लेके आए और अब बेटे को देनी है बेटी को देनी, जैसे घर में फल लेके आए या कोई खूबसूरत चीज लेके आए। तो अब यहां पर उलमाए किराम ने लिखा है, आला हजरत अली रहमा ने लिखा है कि दीन की तालीम ये है कि यहां पर बेटियों को मुकद्दम किया जाए, बेटियों को तरजीह दी जाए। जैसे आप घर के अंदर कोई शख्स मिठाई लेके आया, ये मिठाई बेटियों को पहले दे बेटों को बाद में दे, फल लेके आया बेटियों को पहले दे बेटों को बाद में दे, लिबास सूट वगैरह लेके आया, बेटे बेटियों दोनों के सूट हैं, बेटियों को पहले दे बेटों को बाद में दे। तो ये जो इस तरह की रोजमर्रा की बीसियों चीजें हैं, इन सब के अंदर जो दीन की तालीम है वो ये है कि बेटियों को तरजीह दी जाए। ये हमारे दीन की बड़ी खूबसूरत तालीम है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक तादाद है जो इस पर अमल भी करती है, बहुत अच्छे तरीके से अमल करती है। तो ये तो है जो शरीयत की एक तालीम है। अब ये है कि अगर एक को दूसरे पर तरजीह दी जाए तो ऐसी सूरत में सब्र कैसे किया जाए? तो देखिए, जिंदगी जो है वो इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरती है। बड़ा मुश्किल है कि इंसान की सारी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक हो। जिंदगी जो है वो नाम ही इसका है कि कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, कभी नशेब है तो कभी फराज है, कभी अच्छाई है तो कभी बुराई है, कभी मर्जी के मुताबिक है, कभी मर्जी के खिलाफ है। जिंदगी इन्हीं चीजों के मजमूए का नाम है। ऐसी सूरत के अंदर सब्र जो है ये बंदाए मोमिन के लिए एक जखीरा है। हदीस मुबारक में फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि अगर उसे भलाई पहुंचे तो भी उसके लिए बेहतर है, अगर उसे बुराई पहुंचे तो भी उसके लिए बेहतर है। फरमाया कि भलाई पहुंचे तो शुक्र करता है, बुराई पहुंचे तो सब्र करता है, दोनों सूरतों में सवाब मिलता है। तो लिहाजा होना ये चाहिए कि अगर वो लड़के को तरजीह दी गई है या लड़की को तरजीह दी गई है, तो जो दूसरा फरीक है यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसे चाहिए कि इसके ऊपर सब्र करे और सब्र का सवाब कमाए और समझे कि जिंदगी इसी का नाम है। ये जो हर शय मर्जी से होनी है ना, ये आप याद रखेंगे जन्नत में होनी है, दुनिया में नहीं हो सकता। दुनिया में अरबों खरबों पति आदमी भी जो है हर शय उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। दुनिया में बड़े से बड़ा बादशाह और बड़े से बड़े मुल्क का सरबरा और बड़ी से बड़ी फौज का सिपा सालार, हर शय उसकी मर्जी से भी नहीं होती। तो लिहाजा हर शय जो मर्जी से होनी है वो जन्नत में होनी है, और जन्नत में जाने का रास्ता सब्र करना है, तो ज्यादा सब्र कीजिए।
एक सवाल यह है मुनीर शहजाद भाई का, मिलता जुलता सवाल, आजकल आवाम में भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि पूरे घर की तरफ से एक ही कुर्बानी कर दी जाती है, इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे। इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 15 अफराद हैं और हर साल कोई एक कुर्बानी करता है, जबकि सबके पास कुछ ना कुछ माल मौजूद है। आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी नहीं होती, हर बंदे के जिम्मे जो फरीजा होता है या जो वाजिब होता है वो उसका जुदा गाना होता है। सदका फितर हर बंदे का अपना जुदा होता है, एक सदका फितर सारे घर की तरफ से नहीं दिया जाता। हज हर बंदे का जुदा होता है, घर का एक बंदा सारे खानदान की तरफ से हज नहीं करता। नमाज हर बंदे पे जुदा होती है, घर का एक फर्द सब की तरफ से जो है वो नमाज नहीं पढ़ देता। रोजा हर एक पे जुदा होता है, एक बंदा सारे घर की तरफ से रोजे रख के फारिग नहीं कर देता। तो कुर्बानी जो है ये भी इसी तरह की इबादत है कि ये हर एक का जुदा मामला है, लिहाजा हर बंदा जिस पर कुर्बानी बनती होगी उसे अपनी जुदा गाना कुर्बानी करनी होगी। ये नहीं होगा कि वो जो है वो घर की एक कुर्बानी जो है वो सब की तरफ से किफायत करे। बाद रिवायात में इस तरह का मौजूद है लेकिन वो मंसूख है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो बाद का मामूल है और जो सहाबा किराम का मामूल है वो हमेशा यही रहा कि हर फर्द की जुदा गाना कुर्बानी होती थी।
एक सवाल यह आया है कि खुरूज बिसनुई, इसका क्या मतलब है?
खुरूज बिसुन ही, खुरूज का मतलब है निकलना, बा का मतलब है साथ, सुन उन सुन इसका मतलब है अमल, और हा का मतलब है उसकी यानी कि नमाजी की। खुरूज बिसुन ही असल में नमाज के फराइज में से एक फर्ज है, नमाज के सात फराइज है, उसमें जो सातवां फर्ज है वो है खुरूज बिसुन ही, जिसका सादा अल्फाज में तर्जमा यह बनता है कि नमाज का आखिरी फर्ज यह है कि नमाजी अपने किसी अमल के साथ नमाज से बाहर निकल जाए, ऐसा अमल कि जो नमाज के बरखिलाफ है, नमाज के मुनाफी है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए हम किसी से सलाम नहीं लेते, ऐसा नहीं होता कि हम नमाज पढ़ने को बंदा आया तो हमने उससे हाथ भी मिला लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये जो सलाम करना है ये नमाज से खारिज, नमाज से हटकर एक अमल है। तो अब नमाज का आखिरी फर्ज ये है कि नमाज के आखिर में कोई ऐसा फेल किया जाए, कोई ऐसा अमल किया जाए जो बंदा अपनी मर्जी से करे और उसके जरिए वो नमाज से खारिज हो जाए, तो इसे कहते हैं खुरूज बिसुनई। तो अब इसमें ये बजाते खुद ये फर्ज है और सलाम के अल्फाज के साथ ही बंदा नमाज से निकले ये वाजिब है। इसकी और सूरतें भी हो सकती हैं लेकिन वो दीगर सूरतें जो हैं वो तरके वाजिब की हो जाएंगी। तो तरीका वही है कि नमाज से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के जैसे खारिज होते हैं उस तरह खारिज हुआ जाए। तो जो लफ्ज़ हैं उसका माना ये है, वो असल में थोड़े से अरबी लफ्ज़ हैं तो थोड़ा सा वो बादोकात हो जाता है कि पता नहीं क्या अजीबोगरीब से अल्फाज है। तो इसका मतलब यही है, खुरूज यानी कि खुरूज मिन सलात, नमाज से खारिज होना, नमाज से बाहर हो जाना, सुन ही नमाजी के अपने फेल के साथ।
एक सवाल यह आया इस्लामी बहन की तरफ से कि औरत मजबूरी की हालत में क्या किसी बाएतमाद खातून के साथ सफर कर सकती है?
मजबूरी की हालत में सफर शरई, सफर शरई से मुराद है 92 किलोमीटर या इससे ज्यादा का सफर, ये जो है ये मजबूरी की हालत में किसी खातून के साथ किया जा सकता है या नहीं? तो देखिए, यूं मुतलक मजबूरी का जो लफ्ज है ये काफी नहीं है मसले की वजाहत के लिए, क्योंकि मजबूरी कोई बंदा क्या समझ रहा है कोई पता नहीं। एक आदमी मजबूरी यही समझ रहा है कि मुझे फलां जगह जाना है और मेरे साथ जाने वाला चूंकि इस वक्त कोई महरम शौहर है नहीं तो ये मजबूरी होगी, लिहाजा मैं किसी के साथ चली जाती हूँ, तो ये तो कोई मजबूरी नहीं है। और एक ये है कि एक औरत जो है मिसाल के तौर पर इतनी शदीद बीमार हो गई कि अब वो बिल्कुल जो है वो अगर उसका फौरी तौर पे अगर उसका इलाज ना किया गया, उसकी देखभाल ना की गई तो ये गुजर जाएगी दुनिया से, और अब जो मुआलिज है डॉक्टर है तो वो मुसाफत सफर पे है, इस वक्त महरम कोई साथ नहीं, तो अब जो है वो इसको साथ जो है वो किसी औरत के साथ चले जाना अब इसके लिए जायज हो जाएगा। तो यूं इस तरह की कोई जिससे कहना कि एक एक्सट्रीम लेवल की मजबूरी अगर वो हो तो फिर सफर करना उसके लिए जायज है, वरना जो है वो सफर करना जायज नहीं होगा। या इसकी एक और मिसाल ले लें आप कि कोई औरत जो है वो किसी जगह सफर करके गई अपने महरम के साथ या शौहर के साथ, और वहां पर खुदा ना खास्ता शौहर या महरम फौत हो गया। जैसे कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि कई लोग हज पे जाते हैं, मियां बीवी हज पे गए और वहाँ जाके जो है वो शौहर फौत हो गया, अब बीवी के लिए। अब यहाँ पहले पाकिस्तान से कोई बंदा जाए आम तौर पे बहुत मुश्किल होता है, उन दिनों में टिकट नहीं होती, वीज़ा नहीं मिल रहा होता, उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, यूँ इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं। अब उसने वापस आना तो क्या करे, तो अब यहाँ पर मजबूरी है कि इसने जो सफ़र करना है वो दीगर ख़वातीन के साथ सफ़र कर ले, तो ये है मजबूरी, जेन्युइन मजबूरी जिसे कहा जा सकता है। तो लिहाजा वाकईतन कोई बड़ी मजबूरी है तो सफ़र हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से किसी शय को मजबूरी कह देना और फिर उस पर अमल कर लेना ये अवाम के लिए हरगिज हरगिज जायज़ नहीं है।
बगैर महरम के हज पर जाना कैसा?
बगैर महरम के हज पर जाना कि जिसके लिए मुसाफत सफ़र है, जैसे आप पाकिस्तान से कोई जाता है, तो बगैर महरम के सफ़र करना नाजायज़ है। वो सफ़र हज का हो या उमरे का हो या कोई और सफ़र, बगैर महरम के सफ़र करना जायज़ नहीं है, बगैर शोहर के सफ़र करना जायज़ नहीं है। अहादीस मुबारका में बड़ी शिद्दत और बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान है वो बगैर महरम या शोहर के सफ़र ना करे। अब आप देखिए ना कि किस लेवल पे जाके बात की गई है कि जिसका अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान है वो बगैर महरम के या बगैर शोहर के सफ़र ना करे। और इसी तरह उलमा ने लिखा है, आला हजरत अली रहमान ने भी लिखा है कि जो यूं बगैर महरम के बगैर शोहर के यूं सफ़र करती है तो कदम कदम पे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। तो लिहाजा हज का सफ़र हो या उमरे का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए।
एक सवाल यह आया है कि कहा जाता है कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है तो वो 10 ज़िलहिज्जा तक अपने बाल और नाखून वगैरह ना काटे, तो अगर किसी ने काट लिए तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं होगी?
ये एक अहम चीज़ है, अहम से मुराद ये है कि यानी कि मशहूर लोगों में ज़्यादा होती है। देखिए एक इस्तेहबाबी यानी पसंदीदा शरीयत का हुक्म, शरीयत का पसंदीदा हुक्म है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, फ़र्ज नहीं है, एक पसंदीदा हुक्म है। हदीस मुबारक में फरमाया गया कि जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो उसे चाहिए कि ज़ुलहिज्जा शुरू होने से लेकर अपनी कुर्बानी करने तक ना अपने नाखून तराशे और ना अपने बाल काटे, तो ये एक इस्तेहबाबी हुक्म है। अच्छा, इसी तरह जिसने कुर्बानी नहीं भी करनी, जिसने कुर्बानी नहीं भी करनी उसके लिए भी हदीस मुबारक है कि वो भी ये 10 दिन जो हैं इन दिनों के अंदर वो नाखून ना काटे और ना जो है वो बाल काटे। तो ये है एक पसंदीदा हुक्म, जो इस पे अमल करेगा उसे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ कर लेता है कि किसी ने नाखून काट लिए तो इसका कुर्बानी पे कोई असर नहीं होगा। कुर्बानी एक अपनी जगह इबादत है, एक अपनी जगह हुक्म है, और ये जो नाखून तराशने वगैरह का हुक्म है ये एक अपनी जगह है। अगर किसी ने नाखून तराश लिए, बाल काट लिए, तो उसकी कुर्बानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो नाखून तराशने या काटने का हुक्म है कि ना काटे जाएं, वो भी उस सूरत में है कि जब 40 दिन से ज़्यादा दिन ना बनते हों। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने इतने दिनों से नाखून नहीं काटे या उसने अपनी जो है वो मुए जेरे नाफ जो है, नाफ के नीचे के बाल जो है वो नहीं काटे, कि अब अगर वो नहीं काटता कुर्बानी की वजह से तो उसके 40 दिन से ऊपर हो जाएंगे, 41 दिन हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर वाजिब है कि 40 दिन से ऊपर ना होने दें, 40 दिन के अंदर अंदर जो है वो नाखून तराशना और ये जो मखसूस बाल है इनका काटना वाजिब होता है, इससे ज़्यादा करना गुनाह होता है। तो ये हुक्म भी उस सूरत में है। तो अब इन दोनों को मिलाकर जो है वो नतीजा निकाला जाएगा, लेकिन बिला वजह भी किसी ने अगर नाखून काट लिए, बाल काट लिए, तो कुर्बानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरई मसाइल सीखने, याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इल्म का मुझको शौक था कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा, इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।